आज हम सहाबे कराम को मेयार बनाकर देखते हैं, क्या खूबियां थी उनमें। देखिए ना, किसी की भी कामयाबी में वर्कर्स का बहुत काम होता है, आप जानते हैं। आप अपने घर में लीजिए, एक अच्छी दावत आपने पका ली 50 लोगों की, तो मानते कि नहीं मानते कि आपकी मेट्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। घर में जो लड़कियां हेल्पर हैं, जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, आप खुद हैं, एक टीम वर्क होता है माशाल्लाह। 8-10 लोग मिलते हैं, 50 लोगों की दावत बड़ी अच्छी बनती है, ऐसी है ना। आज मैं आपको ये सोच देना चाहती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जो काम हुआ था, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही का, उसमें आपके गिरोह के लोगों की खूबियाँ क्या थी। बात वाजे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सहाबा कराम ने रस्मी तालीम कहीं से नहीं ली थी, शौक बहुत था। तो चंद पॉइंट्स की सूरत में बता सकूंगी, टॉपिक बहुत बड़ा है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जिसको अल्लाह ताला सूरत फतह की आयत 29 में क्या कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए, अल्लाह के नबी का नाम कलमे की सूरत में लिखा हुआ है, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हैं ही, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। और सूरत फतह से पीछे सूरत मोहम्मद गुजरती है, जिसमें बहुत तذکرہ है इसका। असल बात क्या है, वल्लज़ीना माहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, ये हैं वो जिनको हम सहाबा कहते हैं। कैसे थे वो? नंबर एक, अशिद्दा उलल कुफार, कुफार के मामले में बड़े शदीद थे। क्या मतलब, बदतमीज़ थे, गुस्ताख थे, रूड थे, गालियाँ देते थे, मुर्दाबाद कहते थे काफिरों को भी। नहीं, शदीद किस में थे? अपने असूलों में शदीद थे। वो मुल्कों के बदलते रंग नहीं बदल लेते थे, वैसे भी लेट होने के शौक में वहाँ जाकर उनका रंग ढंग नहीं अपनाते थे, कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं थे। वो कुफर और इस्लाम का मिला जुला एक मरगूला बनाकर दीन और दुनिया के नाम पर पेश नहीं करते थे। वो जहाँ जिस हाल में होते थे, वो अल्लाह के बंदे होते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो जब बैतुल मक़दस की फ़तह के मौके पर वहाँ पहुँचे, तो बदन पे जो कुर्ता था उसमें कई पैबंद थे। किसी ने कहा कि ये कुर्ता तो बदल लें, आखिर वहाँ इतने बड़े लोग आए होंगे, आपको चाबी देनी है, इतनी बड़ी तकरीब है, शाही प्रोटोकॉल है। तो गुस्सा आ गया उमर को, कहने लगे, जिन कपड़ों में मालिकुल मुल्क के सामने खड़ा होता हूँ, दुनिया के बादशाहों के सामने भी उसी में खड़ा हो जाऊँगा तो क्या बड़ी बात है। और बारी जब आई आपके वहाँ पहुँचने की, तो ग़ुलाम ऊँट पे है, और उमर ने उस ऊँट की नुकेल थामी हुई है, और ग़ुलाम थर थर काँप रहा है कि चले रास्ते में तो मैंने आपकी बात मान ली कि मदीना से निकले, आधा वक्त कुछ वक्त मैं बैठ जाऊँ, कुछ वक्त आप बैठ जाएँ, ये तो मैंने मान लिया, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, पर अब आप ऐसा कीजिए कि मेरी बारी आप ले लीजिए, मुझे आने दीजिए नीचे, आप ऊपर आ जाए। उमर ने कोड़ा पकड़ लिया, क्यों, तेरी बारी है तो मैं क्यों ऊपर बैठूँ, कल क़यामत के दिन रब मुझसे पूछेगा। कहा कि लोग क्या सोचेंगे, उस वक्त कोई तस्वीरें और प्रोफाइल्स और पिक्चर्स तो नहीं होती थी कि लोगों को पहले ही पता उमर कौन है? कहा नहीं, वल्ला ही जाके पढ़ के देख लीजिए हिस्ट्री को, जब उमर उस ऊँट की नुकेल थामे जिस पे उनका अपना गुलाम है, बैतुल मकदस की सरहद में दाखिल होते हैं, लोग क्या समझते हैं कि वो उमर है जो ऊपर बैठा है? जाहिर बात है, दुनियादारी तो यही थी और ये गुलाम है। लेकिन जब असल हकीकत खुली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गूंज हो गई, कितने लोग सिर्फ इस एक मंजर को देख कर मुसलमान हो गए कि ये उमर के जो गुलाम को ऊँट पे बिठाया है, ये वाकई हकदार है कि बैतुल मकदस की चाबी इसके पास हो। आज हम भी बैतुल मकदस की चाबियों के मुंतजर हैं, थाल में रख के नहीं मिलेंगी, या आपको मुझे किसी कुरानदाजी में चाबी नहीं मिलनी, इसके लिए उमर जैसा किरदार होगा। अशिद्दा उलल कुफार, रुहमाउ बैनहुम, दूसरी बात, आपस में रुहमा थे, रहम था, एक मुस्लिम हुड को पसंद करते थे, सिर्फ इस नाम पे कि ये है तो मेरा मुसलमान भाई ना। वो ये नहीं कहते थे कि आज के मुसलमान से काफिर अच्छा, नाउज़ुबिल्ला, काफिर कभी अच्छा नहीं हो सकता मुसलमान से, याद रखिएगा। उनके दिलों में इस्लाम के नाम पे मोहब्बत थी। वो ये नहीं कहते थे ये फलां मसलक का मौलवी है, इसकी ना सुनना, और ये फलां फिका की मस्जिद है, इसमें ना दाखिल होना, और वो कड़वे कड़वे नाम लेकर उम्मत को कई फिरकों में नहीं बांटते थे। रुहमाउ बैनहुम, याद कीजिए अल्लाह के नबी सल्लम के सहाबी काब बिन मालिक को, कि जब थोड़ी सी सुस्ती की वजह से तबुक से पीछे रह गए और सारा काफिला चला गया तबुक में, वापस आए, सब ने झूठे सच्चे उजर दे दिए, लेकिन ये कहते थे मैंने झूठ नहीं बोलना, जाके नबी को कह दिया कि अल्लाह के नबी, मेरे पास सारी आसूदगी थी, मैं जा सकता था, बस सुस्ती कर दी, दिल्ली डेली, आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं। जब बंदा डबल माइंडेड होता है वो कभी नहीं पहुंचता, ये तो मैंने भी देख लिया। वही आते हैं जिन्होंने सोचा होता कि हम आएंगे। खैर, तो जब काब बिन मालिक के साथ बाइकॉट चल रहा था, सोशल बाइकॉट, मेरा ख्याल आप सभी जानते हैं इस वाक्य को, कोई नई बात नहीं है जो मैं इसको दोहराऊं। तो उन्होंने जब देखा कि मदीना में कोई शख्स मेरे से बात नहीं करता, आप अपने ऊपर लें, शादी में जाएं और आप अपनी टेबल वालों को सलाम करें और वो मुंह उधर फेर लें, मेरा ख्याल है हम तो वहीं से पलट जाएं, कहां वो थे। इतने में जब कोई उनकी बात का जवाब नहीं देता तो उनको एक खत मिला, खूबसूरत रेशम के टुकड़े में लिपटा हुआ, शाह गस्सान या गालिबन उस वक्त की किसी सुपर पावर की तरफ से उनको लेटर आया था। कहा, हमने सुना है कि तेरे साथी यानी मोहम्मद ने तेरी कदर नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ अगर एक जंग से पीछे रह गया, आओ हमारे पास, हम तुम्हें ओहदे देते हैं। उस वक्त क्या किया उन्होंने, उस खत को पास पड़े एक तंदूर में झोंक दिया, ये थे रुहमा उबैना हूँ, इस्लाम के नाम पे मोहब्बत थी, एक दूसरे से मुसलमान होने की वजह से प्यार करते थे। और तीसरी खूबी देखिए, तराहुम रुकान सुज्जदन, तुम देखते हो उनको, या तो वो रुकू की हालत में होते हैं या सजदों की हालत में होते हैं, यानी लोगों की आंखों में आंखें डालने वाले और रब के आंखें आंखें झुकाने वाले। और एक मौके पे एक शख्स ने उसके बारे में, अल्लाह के नबी के असहाब के बारे में ये कमेंट दिया था कि हुम रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन नहार, रात को ये अल्लाह के डर से रोने वाले राहब बन जाते हैं और दिन को शख्स सवार दुश्मन की आंखों में आंखें डालने वाले बन जाते हैं। खूब कुलाफ नाम का एक कमांडर था दुश्मन कौम का, उस दौर में रात को जंगें ख़त्म हो जाती थी, सब अपने अपने मोर्चों में चले जाते थे। तो इसका ख्याल था कि चलो मैं देखे हूँ, दिल में आया इसके कि ज़रा आज मैं लश्कर इस्लाम को देख के तो हूँ, भेस बदल के जाता हूँ कि ये रातों को क्या करते हैं। और जब ये रात के अंधेरे में मुसलमानों के लश्कर के करीब से गुजरा तो इसको भिन भिन की आवाज़ें आईं, जैसे शहद की मक्खियाँ भिन बनाती हैं। करीब आया, गौर से सुना तो लश्कर इस्लाम का एक एक सिपाही तहज्जुद में रब को कुरान सुना रहा था। इतनी दहशत उसके ऊपर तारी हुई, वापस गया अपनी कौम के पास, अपने लोगों को जमा किया, कहने लगा मेरा मशवरा है कि इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो, चले जाओ, तुम नहीं इनको जीत सकते क्योंकि रुहबान बिल लैल व फुरसान बिन नहार। और कहते मैं ये नहीं चाहता कि मेरा इस गिरोह से सामना हो, हमारा इनसे मुकाबला हो और हम जीते, मेरी दुआ और ख्वाहिश यह है कि कभी इस कौम से मेरा वास्ता ही ना पड़े। रुकन सुज्जदन, रातें रब के सामने रोती थी उनकी और दिन को यबतगून फ़ज़ल मिन अल्लाह, तलाश करते थे रब का फजल, दिन में मेहनत करते थे, वो कासे लेकर और भीख मांगने के लिए नहीं खड़े हो जाते थे कि हम दीन वाले हैं हमें भीख दो, वो अल्लाह के सामने भी झुकते थे और दिन को मेहनत मजदूरी भी करते थे। और उनका हदफ क्या था, वो रिदवाना, उसकी रजा चाहते थे। सीमा हूँ फी वजूह है मिन असर सुजूद, और उनके चेहरों पे सजदों के असरात होते थे। आप इसको सोचते होंगे गट्टे यहाँ पड़ जाते हैं, होंगे ये भी, लेकिन चेहरों पे आज भी याद रखिए, जो बंदा रब से जुड़ा होता है उसके चेहरे पे खूबसूरती होती है, एक नरमी होती है, वो दूसरों के लिए कुंद छुरी नहीं बनता। उनके चेहरों के ऊपर से पता चलता था ये सजदे करने वाले लोग हैं। आज हम जितने दीन के करीब आते हैं हम उतने कठोर होने लगते हैं और ही फतवे जारी करते हैं, तुम भी काफिर, तुम भी जहन्नमी, तुम भी गुनाहगार, मैं नेक हूँ। नहीं, उनके ऊपर चेहरों पे एक अजीब चमक होती थी, आजजी का निशान था। ज़ालिक मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, ये है उनकी मिसाल जो तौरात और इंजील में है। और अल्लाह ने उस मिसाल को फिर आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज में पेश किया कि एक छोटी सी खेती जो अपना कोंपल उठाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते मजबूत होती है, फिर एक सरसब्ज खेती होती है जिसको देखकर किसान खुश होता है। मुराद क्या है कि नबी सल्लम के सहाबा एक ऐसी खेती बन गए, जिसको आज एक इंग्लिश राइटर है उसने कहा नर्सरी ऑफ हीरोज़। खुलासा क्या, कहते हैं हर कौम के पास एक हीरो होता है, कोई एक या दो, जैसे अमेरिकन है उनके चंद हीरोज़ हैं, वो उनकी यादगार मनाते हैं, उस पर मेमोरियल डे दे देते हैं, इजिप्शियंस है तो वो फिरौन को हीरो मानते हैं। कहते हैं मुस्लिम्स के पास तो नर्सरियों की नर्सरियां हीरो से भरी पड़ी हैं, जिस पौधे को उठाओ वो अपनी जगह एक खूबसूरत हीरो है। तो आइए देखते हैं कि आखिर सहाबा की फिर क्या खूबियाँ थी। कि दुश्मन दूर खड़ा उनसे डर रहा होता था। एक शख्स मदीना सफ़र करके आता है, हज़रत उमर का दौरे खिलाफत चल रहा था, और क्या देखने आता है कि मैं सिराज उमर को तो देख के आऊँ, ये है कौन? नया बंदा था, नहीं मिल सके उमर। ढूंढता ढांढता मस्जिद नबी में आ गया। देखा एक शख्स ज़मीन पर सोया, इतनी गहरी नींद सो रहा है कि आधा धड़ धूप में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको होश नहीं है। पास खड़े किसी शख्स को कहते, ये कौन है? वो कहने लगा, लगता है कि तुम नए आए हो इस शहर में, ये तो हमारे खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर है। कहा, अच्छा ये उमर है? फिर वहाँ खड़ा होकर कहता है, ये वो उमर है जिसने कैसरो किसरा की रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं। और कहने लगा, क्या उमर, तू इसलिए आराम से सो रहा है कि तूने इंसाफ कायम किया, और वो इसलिए कांप रहे हैं कि उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की। तो जो लोग इस तरह के थे कि दुश्मन उनकी गवाहियाँ दें, आखिर उनकी खूबियाँ क्या थी? तो पहली खूबी, चंद पॉइंट्स अब दूंगी इसके बाद एंड तक, सहाबा की पहली खूबी क्या थी कि उनमें नेकियां कमाने का शौक था। आप सब पॉइंट्स में लिखें, बाद में आपके मेरे लिए एक खूबसूरत चेकलिस्ट बनेगी, और आप घर जाकर इस लिस्ट को अपनी फ्रिज पे लगा लें, अपने कंप्यूटर पे लगा लें। क्या सहाबा की तरह मुझे नेकियां कमाने का शौक़ है? क्योंकि शौक़ इबादत जो होते हैं ना, वो सिर्फ नमाज रोज़े की सूरत में नहीं होता। कभी नेकी नमाज़ पढ़ना होती है, कभी किसी का बच्चा उठा के उसको देखना भी होती है, कभी इंसान किसी बीमार की तीमारदारी करता है। सहाबा कराम वो थे, ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी उनकी कोशिश क्या होती थी? फ़िर्रु इलल्लाह, फस्तबिकुल खैरात, ये भी नेकी कर लो, वो भी कर लो, हर वक्त इस जस्तजू में रहते थे कौन सा अमल ज़्यादा नेकी देता है। कभी आकर अल्लाह के नबी से पूछते, अबू ज़र कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जो मुझे जन्नत में ले जाए। आपने फरमाया, जब तेरे से कोई बुराई हो जाए तो इसके फौरन बाद एक नेकी कर लिया करो, और याद रखो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी एक नेकी है। उन्होंने पूछा, अच्छा ला इलाहा एक नेकी है? आपने कहा, ये तो सबसे बड़ी नेकी है। अब बताइए ये शौक़ किसको होता है? जिसको नेकियों का शौक़ होता है। सहाबा कभी नेकी का कोई मौका से जाने नहीं देते थे। हम क्या कहते हैं, वो कर लेगा, उसको भी तो पता है ना, मैंने कौन सी जिम्मेदारी ली, मैं क्यों फंसूँ? नेकी के मौके पे हम यूँ सर झुका के साथ से गुजर जाते हैं कि कोई हमारे से निगाह मिलाकर हमें ना कह दे आप ये नेकी करते हैं। वो ढूंढते थे, वो वाक्य आपने सुना होगा कि फजर की नमाज के बाद नबी ने पूछा, है तुम में से कोई जिसने सुबह से कोई सदका किया? एक हाथ खड़ा होता है अबू बकर का। और है कोई जिसने सुबह से किसी बीमार की तीमारदारी की? एक शख्स खड़ा होता है, वो भी अबू बकर है। चंद बातें पूछी, जो बात पूछते कि अबू बकर का हाथ उठता क्या? सहाबा ने पूछा, अभी तो सुबह हुई है, आप ये सारे काम कैसे करके आ गए? कहा, सुबह उठ रहा था तो अपना घर साफ किया, तो हम सारे का भी कर दिया। अब फजर से पहले उठे होंगे तो किया होगा, और आ रहा था तो रस्ते में एक सवाली मिल गया, सदका भी दे दिया। नमाज में भी वक्त था, सोचा वो बीमार है उसकी मदद भी कर रहा हूँ, तीमारदारी भी कर आया। यानी वो नेकियों को अपने लिए करेंसी कहते थे। देखिए लफ्ज़ नेकी को लिखिए डॉलर, चले आज रुपीज़ हैं आपके तो रुपीज़, पाउंड्स। क्या आज हमारे मर्दों को रुपए जमा करने का शौक़ है? क्या डॉलर का लफ्ज़ सुनकर हमारी आंखें खुलती हैं? पाउंड का, यूरो का, क्रोन का, स्टर्लिंग का रेट क्या चल रहा है? क्या आज हमारी नज़रें इस पे हैं? इल्ला माशाल्लाह। जिस तरह आज हमारे मर्दों की नज़रें रुपए को ऊपर से ऊपर गुजारने में ना, सहाबा की नज़रें उस वक़्त इसमें थी। और सहाबा में नेकी कमाने का शौक़ कैसे था, मैं मिसाल दे रही हूँ। देखिए रिस्के हलाल कमाना इबादत है। अलकासिब हबीबुल्ला, एक मर्द अपने बीवी बच्चों की किफ़ायत के लिए रिस्क कमाता है, ये सरासर इबादत है। इस्लाम हाथ छोड़ के जान तोड़ कर बैठने वाला दीन नहीं है। लेकिन माजरत के साथ ने सारे, सबसे पहले तो अपने ही भाइयों से, मुझे सगे भाइयों से माजरत के साथ, और फिर मेरे ख़ानदान के हर उस मर्द से माजरत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी का हम गम मकसद सिर्फ और सिर्फ रुपया कमाना बना दिया। जिनकी सेहत डाउन होती है तो बिजनेस के डूबने पे हो रही होती है, और जिनके चेहरे पे चमक होती है तो पता चलता है आज करोड़ों नहीं अरबों की डील करके आए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मुसलमान मर्दों का ज़िंदगी का हासिल माल कमाना बन गया, और औरतों का उजाड़ना बन गया। औरतें खर्च करने में फख्र करती हैं, मर्द कमाने में फख्र करते हैं, और अच्छा जोड़ा वो है जो मर्द देते हुए ना पूछे किधर लगाए और बीवी खर्च करने के बाद ना बताए किधर कमाए। कहते कितनी खुशकिस्मत है। जिस तरह आज के मुसलमान मर्द को माल कमाने का शौक है, इस तरह सहाबा को नेकियां कमाने का शौक था। देखिए वो दिमाग उनके बड़े तेज थे, वो जमा तफरीके कर रहे होते तो वल्लाही जिन्होंने दुनिया में इतनी तब्दीली पैदा कर दी उनके सोने के महल होते, और माल तो उनके पास भी बहुत था। ये बहुत बड़ी भूल है कि आप माल कमाने को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो आप गरीब होते हैं, वल्लाही उतना ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दुनिया के पीछे भागता है दुनिया उससे दूर भागती है, और सारा वक्त उसके हाथ दिल परेशान ही रहता है, और जो इस दुनिया की तड़प छोड़ता है दुनिया ऐसे उसके पाँव में आके आती है जैसे हकीर चीज़ है। वो जान छुड़ाते मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह कहते और ले। ये हमारी भूल है। आज अगर नमाजें जा रही हैं कमाने के दौरान, फ़र्ज छूटे, जमात छूटी, वक्त से बेवक्त कज़ा हो गई, बहुत भी पक्के नमाजी हैं तो रात को 5 सजदे इकट्ठे कर लिए हैं, वल्लाही वो कमाई इस मुल्क में खैर नहीं लाएगी, वो आपके ख़ानदान में खैर नहीं लाएगी। अपने बेटों को तो ये पैगाम दे सकते हैं, अगर शौहर आपकी नहीं सुनते, भाइयों से भाइयों की मोहब्बत में ये बात तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन आज की औरत भी मज़े में है, कहती है नहीं बहुत कमाते हैं। देखिए आप माँ बैठी होंगी, कई माएँ हैं माशाल्लाह, अपने दो बेटों को देख लीजिए। एक वो बेटा है जो माशाल्लाह दिन रात एक ही काम कर रहा है, और दिमाग भी इतना चलता है कि कोई बात नहीं थोड़ी बहुत हेरा फेरी है खूब कमाऊ पूत है। और दूसरा कहता है माँ 5 वक्त मस्जिद में जाऊँगा, 5 दफ़ा दुकान बंद करूँगा। तो जाहरी बात है कि ज़ाहर अगर एक 5 लाख ले आया तो हो सकता है वो 50,000 ले आए। तो माँ से पूछे सुनाओ तेरा कौन सा बेटा कामयाब है, बाप से ही पूछ लीजिए। वो कहेगा ये अच्छा है, ये दुकान पे बैठता है तो मैं मुतमईन हूँ, ये निरा मौलवी, ये तबलीगिया, ये दाढ़ी वाला, ये देखो दिन में सारा दिन तो दुकान बंद रखता है। सहाबा को नेकियाँ कमाने का शौक था। अपने ऊपर लेकर सोचिए, आज यहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात को लेकर आए तो क्या हमें भी नेकियाँ कमाने का शौक़ है। औरतों की मिसाल ले ले तो जैसे कपड़े बनाने का शौक़, जूते बनाने का शौक़, पहनने का शौक़, इस्तेमाल का शौक़, चले शौक़ में तो कोई बुरी बात नहीं है, सब ने पहनना होता है, सब ने खाना होता है, लेकिन जब ये एक वजह बन जाती है दुनिया में बढ़ोतरी की, शादियों का मकसद, यानी फिर हर दर्स में कह के जाती हूँ आज हमारे मुल्क में शादी कल्चर है। एक शेर है किसी का कि तेरे दीन की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, कुछ इस तरह का शेर है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुझे ऐसे लगता है दीन के लफ्ज़ को आप आज की शादी ब्याह और सोशलाइजिंग कह दें। कोई एक हफ्ता आपका खाली जाता है जिसमें आपको शादी का कार्ड ना आए, और अब पहले तो कार्ड आता था पूरी किताब आती है, और कोई ना तो बुलाए फिर देखिए ज़रा आपकी अना कहाँ जाती है। मैं नहीं कहती शादियाँ ना करें, पर इतनी एलैबोरेटेड शादियाँ, करोड़ों पे शादी चली गई, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ पे एक शादी जिस मुल्क में जाएगी, तो माल तो मर्दों ने गरीबों ने कमाना, इज्जत नहीं रखनी अपनी। अभी एक भी आई है, अभी अगली का 1.25 करोड़ जमा करना है, अभी तीसरी का करना है, बेगम का तो मूड ही नहीं सीधा होना अगर उसको 50,000 दिया ना कि जाए एक जोड़ा तो ले आ शादी का। देखिए कड़वी बातें हैं, मुझे पता है आपको खुशी नहीं हो रही, मत बुलाएं मुझे अगली दफ़ा, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस ज़ुबान से हमेशा वही बात निकलेगी इंशाल्लाह जिसकी ज़रूरत है। मैंने जितना मादी तौर पे भाग दौड़ करते अपने इस पाकिस्तान में लोगों को देखा है, मैंने कभी अपने इर्द गिर्द वहाँ नहीं देखा। कोई मान सकता है पूरा साल को बाजार ना जाए, हम तो वहाँ रहते हैं। अल्लाह की कसम बाजार लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है, घर बैठे अल्लाह नेमतें दे देता है। कुछ लेना है जाइए नेट से ऑर्डर करिए, आपके घर में चीज़ आती है, चले भी जाए बंदा तो कोई बुरी बात नहीं है, और फिर चले सारी पाबंदियों में जाकर आप कर रहे हैं शॉपिंग तो बड़ी बात है, कोई बात नहीं। कभी एक दो दफ़ा वंस अ व्हाइल सीज़न में एक दो बार जा सकता है, हिसाब करें। मैंने इस पर एक लेक्चर पिछले साल दिया था शॉपिंग और ख़वातीन, बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने सोचा था कि यहाँ तो मुझे उसकी 1 लाख सीडी बनवा के बांटनी चाहिए जितनी यहाँ की औरतें शॉपिंगों में खराबियाँ करती हैं। मैं आपको दावत देती हूँ, और आज जो हमारे अगर कोई एडमिन सुन रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शॉपिंग और ख़वातीन का लेक्चर डाल दें, कोई बुरा लेक्चर नहीं है, आपको टिप्स मिलेंगी क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि शॉपिंग आसान हो जाए, चीज़ भी ले लें लेकिन बेहयाई बेपर्दगी और मर्दों से गुत्थम गुत्था तो ना हो। लोग कहते हैं डॉलर का रेट क्या है इस साल, हर साल एक सवाल होता है, जाहिर है जो बाहर से आता है तो वो जाहिर है उन्होंने करेंसी को चेंज करना होता है। और आप कहते हैं लोग मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं ये पूछिए कि इस साल दुल्हन के जोड़े का रेट क्या है। यकीन कीजिए इसी मुल्क में मैंने पिछले 2-3 साल पहले मिसाल दी थी पिछले ट्रिप्स में कि 1 लाख का दुल्हन का जोड़ा मुझे बहुत बड़ा लगा था, पिछले साल तक 3 लाख रेट था, इस साल 6 लाख का जोड़ा। अब आप ना रोने लग जाएं, 1,20,000 का मेकअप है, ये अब आपकी रिवायत है, ये जाएगी आगे। मुझे बताइए तो मर्द क्यों ना कमाएं? आप ये बातें जो मैं कह रही हूँ मर्द कमाएं, घर जाएंगे ना मियाँ को कह के तो देखिए जी आप नेकियाँ कमाएं और 5 वक्त की नमाज कमाएं, तो वो कहेगा बेगम ये 1,20,000 कहाँ से दूंगा। ये हम औरतें हैं जिन्होंने अपने मर्दों को जलील किया हुआ, मशीनें बने हुए हमारे मर्द। आप मुझे बताइए 1,20,000 का मेकअप चलिए मियाँ के लिए हो, और अल्लाह ने करोड़ों दिए कोई बुरी बात ना थी, अगर सिर्फ मियाँ ही देखता बेपर्दगी ना होती। 1,20,000 पे अगर चले 1,000 मर्दों की निगाह पड़ गई तो कितने गुना के तीर। और फिर जो गुना, एक होता इसराफ एक होती तबजीर, जायज़ पे लगा लीजिए। अब 10 लाख का जोड़ा पहन ले, मुझे कोई हक नहीं उसको महंगा कहने का, आप शायद 20 लाख का पहन सकती थी अगर आपने बड़ी आजजी में 10 लाख का पहन लिया, इट्स फाइन। पर नुमाइश रिया कहाँ से, और ये जो ब्रांड्स ने हमें किसी जगह करना छोड़ा, सिर्फ एक नाम लिख दीजिए तो 1,000 की चीज़ 5,000 में चली गई। क्या ऐसी उम्मत इस्लाम को गालिब कर सकती है? सब पहनते थे, सब खाते थे दुनिया में, आज से 10 साल पहले तक भी लोग बहुत खाते पहनते थे, लेकिन जो आज पिछले 5 साल में वबा चल गई हमारे इस मुल्क में, यहाँ से इस्लाम गालिब नहीं होगा। मैं कह सकती हूँ इस लाइफस्टाइल में अगले 1-2 सदी आपको मुझे और रुलना पड़ेगा, बड़ी सैंक्शंस लगेंगे आपके इस मुल्क पे भी, अल्लाह ना करे बचा के रखे, लेकिन मेरे कहने आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे लाइफस्टाइल से पता चलेगा कि यहाँ इस्लाम गालिब होना है कि नहीं होना। आज नियत कर लीजिए इंशाल्लाह 10-5 साल के अंदर ये मुल्क इस्लाम का गहवारा होगा, ये मक्का होगा। और ये बात तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ये तो आपने सुना है ना, पाकिस्तान लफ्ज़ को अगर आप अरबी में ट्रांसलेट करें, पाक पाक उर्दू और फारसी का लफ्ज़ है, इस्तान लैंड को कहते हैं, शहर को कहते हैं, आप अगर इसको अरबी में करें ना तो पाक मैंने तैयबा, और इस्तान का मानी है मदीना, ये मदीना तो तैयबा है, इस पर पूरा मैंने लेक्चर दिया था 1-2 साल पहले। पाकिस्तान लफ्ज़ को अगर आप अरबी में ट्रांसलेट कर लें तो ये मदीना तो तैयबा है, और वल्ला ही इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का जो मुकाम है ना, ये बिल्कुल वो है जो नबी सल्लम के दौर में मदीना तैयबा का था। एक तरफ यहूद के 3 कबाइल, दूसरी तरफ जो सो के कबाइल थे खजरत और औस, और तीसरी तरफ से मक्का वाले। आज भी अगर आप पाकिस्तान के इर्द गिर्द के मुसलमानों और गैर मुस्लिम मुल्कों को देखिए, एग्जैक्टली वही कैफियत है, ये सिर्फ एक दरवाज़ा है, जिस दिन ये खुल गया मुस्लिम दुनिया नहीं बचेगी। पढ़िए हिस्ट्री, नबी सल्लम की अहादीस पढ़िए, क़ुर्बे क़यामत की अलामतें पढ़ें, किताबुल फितन पढ़िए, और जो होने कल वो आज हमें किताबों से पहले ही पता लग रहा है। जब कोई कौम उस मकसद से दूर हो जाती है जिसके लिए वो वजूद में आती है, तो अल्लाह उसको खसो खशाक की तरह तबाह कर देता है। आपने कितने प्यार से अभी कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अगर आपने मैंने इस पाकिस्तान को बचाना है तो इधर ला इलाहा इल्लल्लाह लाना पड़ेगा, सारे ज़ाहरी बातनी बतों को तोड़ना पड़ेगा, सहाबा की तरह अपने दिल में नेकियों का शौक़ और जज्बा लाना पड़ेगा। इतनी मिसालें हैं सहाबा के नेकियां करने की, या सलून अकमाज़ा युनफिकून, 2 दफ़ा आयत है कुरान में, वो आपसे सवाल करते हैं हम क्या खर्च करें, पहली दफ़ा ये नहीं बताया क्या खर्च करें, ये बता दिए कहाँ खर्च करो, फल इलवालिदैन और वलक्रबिन, फिर दोबारा भी बता दिया, बार बार आके ये पूछते थे, माल वाले सहाबा आके पूछा करते थे इस माल का करें तो क्या करें। उनको नहीं पता था बैंक पड़े हुए, उनको नहीं पता था ज़मीन के टुकड़े खरीद लें, उनको नहीं पता था शेयर्स खरीद लें। उस्मान गनी ने तबूक के मौके पे जो माल इस्लाम के रस्ते में दिया था, और 9 दफ़ा नबी की ज़ुबान से एक गवाही सुनी थी, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, सुना हुआ है वाक्य। कहते हैं कि एक उस ऊँट का काफिला मदीना में था तो दूसरा शाम में होता था, सामान से लदे फदे सैकड़ों हजारों ऊंट अल्लाह के रस्तों में देने वाले ये थे सहाबा। नेकियां जमा करने का शौक था, सदका खैरात करने का शौक था, अल्लाह के रास्ते में अपनी दौलत बांटने का शौक था। सहाबा कराम अपने माल को अपना नहीं अल्लाह का माल समझते थे। आज हम अपनी ज़ात पे कितना लगाते हैं, और 2.5% ही सही, जब उसकी ज़कात निकलती है चीखें निकल जाती हैं इतनी, और जब उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपयों में या डॉलर्स में इतने, फिर डोरियों का वज़न कटता है, फिर नगों का वज़न कटता है, फिर उसमें से नए पुराने सोने का वज़न कटता है, फिर कहते हैं घर की मासियों को दे दें, फिर अपनी ज़कात अपनी मासियों पे सारा साल बांटते रहते हैं, वो कहती हैं बाजी बड़ी फ्याज है, पता चला ज़कात अदा हो रही है, अपनों को देते हैं और अपने ही गुनगुलाते हैं। और इस्लाम का हाल क्या है? आज मेरे आपके लिए ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है।